अमेरिका के लिए भविष्य और 18 जुलाई 2020, संख्या 6, ध्वज।
और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें आ गई और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, और जिन्होंने उन्हें देखा उन पर बड़ा भय छा गया, और उन्होंने स्वर्ग से ये कहती हुई एक बड़ी आवाज सुनी, इधर ऊपर आओ, और वे बादल में होकर स्वर्ग में चढ़ गए और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा। प्रकाशित वाक्य 11:11-12।
सड़क पर रौंदे जाने के बाद एलिया और मूसा सांत्वनादाता को प्राप्त करते हैं और फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। ये हिजकेल की हड्डियों की घाटी में पहले एक शोर सुनाई देता है और फिर एक कंपन होता है, पर हड्डियों में तब भी श्वास नहीं थी।
इसलिए मैंने जैसा मुझे आज्ञा दी गई थी वैसे ही भविष्यद्वाणी की, और जैसे ही मैं भविष्यद्वाणी कर रहा था एक ध्वनि हुई, और देखो एक कंपन, और हड्डियां आपस में आकर हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ गईं। फिर मैंने देखा तो क्या देखा कि उन पर स्नायु और मांस चढ़ाया और ऊपर से चमड़ी ने उन्हें ढक लिया, परंतु उनमें प्राण न था। यहेजकेल 37:7-8।
जब शरीर पुनर्संयोजित हो जाते हैं वे चारों दिशाओं की हवाओं का संदेश सुनते हैं।
तब उसने मुझसे कहा, वायु के विषय में भविष्यद्वाणी कर, भविष्यद्वाणी कर हे मनुष्य पुत्र, और वायु से कह, प्रभु परमेश्वर यों कहता है, चारों पवनों से आ हे श्वास, और इन मारे गए लोगों पर फूंक कि वे जीवित हो जाएं। तब मैंने जैसा उसने मुझे आज्ञा दी थी वैसा ही भविष्यद्वाणी की, और श्वास उनमें आ गया और वे जीवित हो गए और अपने पांवों पर खड़े हो गए, एक अत्यंत बड़ी सेना। यहेजकेल 36:9-10।
सभी भविष्यद्वक्ता संसार के अंत की ओर संकेत करते हैं, इसलिए यहेजकेल का ये अंश उन लोगों के लिए एक दुविधा पैदा करता है जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के दो नबियों के संदेश से बचना चाहते हैं। बेशक जो इस संदेश को अस्वीकार करना चाहते हैं वे अपने आप से जो सबसे आसान झूठ कह सकते हैं वो ये है कि प्रकाशित वाक्य 11 तो केवल फ्रांसीसी क्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाला इतिहास है और उसका अंतकालीन अनुप्रयोग नहीं है। पर यदि आप इस धारणा को स्वीकार करते हैं कि प्रकाशित वाक्य एजोसु है या वीरगों के संसार के अंत की पहचान कराता है, तो आपको इस तथ्य का मेल बिठाना होगा कि संसार के अंत में जो शक्तिशाली सेना तीसरे स्वर्गदूत का संदेश उच्च स्वर में प्रस्तुत करती है उसे परमेश्वर की सेना के रूप में उठ खड़े होने से पहले मृत और पुनर्जीवित बताया गया है।
तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, ये हड्डियां सारे इसराइल का घराना है। देख, वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा नष्ट हो गई है, हम सर्वथा काट दिए गए हैं। इसलिए भविष्यद्वाणी कर और उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो हे मेरे लोगो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हें तुम्हारी कब्रों में से निकालकर इसराइल के देश में ले आऊंगा, और हे मेरे लोगो, जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हें तुम्हारी कब्रों में से निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं, और मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारे ही देश में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा ने ये कहा है और इसे पूरा किया है, यहोवा की ये वाणी है। यहेजकेल 37:33-11।
मसीह बादल के साथ स्वर्ग पर आरोहित हुए और वो बादलों के साथ लौटेंगे, और वे बादल स्वर्गदूतों के प्रतीक हैं। मूसा और एलिया एक ऐसे बादल में स्वर्ग पर आरोहित होते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के समय आकाश के मध्य में उड़ने वाले तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतीक है। मूसा और एलिया रविवार के कानून के समय इस्लाम के एक संदेश के संबंध में स्वर्ग पर आरोहित होते हैं। यशाया इस इतिहास से जुड़ी अनेक सच्चाइयों को उजागर करता है, उसी अंश में जिसका उल्लेख यीशु ने अपने कार्य की पहचान बताने के लिए किया था। उसने नबियों एलिया और एलीशा को इस बात के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि भविष्यद्वाणी का संदेश उनके अपने देशवासियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, और इससे नासरत की कलीसिया के लोग तुरंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसे मार डालने का प्रयत्न किया।
प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं नम्रों को शुभ समाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि मैं टूटे मन वालों के घाव बांधूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करूं और जकड़े हुए लोगों के लिए कारागार के द्वार खुलने की घोषणा करूं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करने के लिए, सब शोक करने वालों को सांत्वना देने के लिए, सीयोन में शोक करने वालों के लिए ये ठहराने को कि उन्हें राख के बदले शोभा, शोक के बदले आनंद का तेल और उदासी की आत्मा के बदले स्तुति का वस्त्र दिया जाए, ताकि वे धर्म के वृक्ष अर्थात प्रभु की रोपाई कहलाएं, जिससे वो महिमा पाए और वे प्राचीन उजाड़ों को फिर बसाएंगे, पूर्व की वीरानियों को उठाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उजड़ी हुई नगरियों का सुधार करेंगे। और पराए लोग तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और परदेशियों के पुत्र तुम्हारे हलवाहे और अंगूर की बारी के रखवाले होंगे, पर तुम प्रभु के याजक कहलाओगे। लोग तुम्हें हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। तुम जातियों की धन संपत्ति का उपभोग करोगे और उनकी महिमा में गर्व करोगे। तुम्हारी लज्जा के बदले तुम्हें दुगुना मिलेगा और अपमान के बदले वे अपने भाग में आनंद करेंगे। इसलिए वे अपने देश में दुगुना अधिकार पाएंगे और अनंत आनंद उनका होगा, क्योंकि मैं प्रभु न्याय से प्रेम करता हूँ। होमबली के लिए हड़पना मुझे घृणित है, और मैं उनके काम को सच्चाई से निर्देशित करूँगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा, और उनकी संतान जातियों के बीच प्रसिद्ध होगी और उनकी औलाद लोगों के बीच। जो कोई उन्हें देखेगा वो उन्हें पहचानेगा कि वे वही वंश हैं जिसे प्रभु ने आशीष दी है। मैं प्रभु में अति आनंदित रहूंगा, मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर में मगन होगी, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, उसने मुझे धर्म की चादर से ढांक दिया है। जैसे दूल्हा अपने आप को आभूषणों से सजाता है और जैसे दुल्हन अपने गहनों से सुसज्जित होती है, क्योंकि जैसे पृथ्वी अपनी कलियाँ गाती है और जैसे बारी में बोई हुई वस्तुएं अंकुरित होती हैं, वैसे ही प्रभु परमेश्वर सब जातियों के सामने धर्म और स्तुति को अंकुरित करेगा। सियोन के कारण मैं चुप न बैठूंगा और यरूशलेम के कारण मैं विश्राम न करूंगा, जब तक उसका धर्म उजियाले के समान और उसका उद्धार जलते हुए दीपक के समान प्रकट न हो जाए। तब अन्य जातियां तेरा धर्म देखेंगी और सब राजा तेरी महिमा, और तुझे एक नया नाम दिया जाएगा जो प्रभु के मुख से रखा जाएगा। तू प्रभु के हाथ में महिमा का मुकुट और अपने परमेश्वर के हाथ में राजसी किरीट होगी। तुझे फिर कभी त्यागी हुई न कहा जाएगा और न तेरी भूमि को फिर उजाड़ कहा जाएगा, परंतु तेरा नाम हिप्सीबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि प्रभु तुझमें प्रसन्न है और तेरी भूमि ब्याही जाएगी। क्योंकि जैसे कोई जवान कुंवारी से ब्याह करता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझसे ब्याह करेंगे, और जैसे दूल्हा दुल्हन पर आनंद करता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तुझ पर आनंद करेगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरेदार बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे प्रभु का स्मरण दिलाने वालों, चुप मत रहो और उसे विश्राम मत लेने दो, जब तक वो यरूशलेम की स्थापना न कर दे और जब तक वो यरूशलेम को पृथ्वी पर प्रशंसा का विषय न बना दे। प्रभु ने अपने दाहिने हाथ और अपनी सामर्थ्य की भुजा की शपथ खाई है। निश्चय ही मैं तेरे अन्न को फिर कभी तेरे शत्रुओं के भोजन के लिए न दूं, और परदेसी के पुत्र तेरी वो दाख मधु न पिएंगे जिसके लिए तूने परिश्रम किया है, परंतु जिन्होंने उसे बटोरा है वे ही उसे खाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने उसे इकट्ठा किया है वे उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पिएंगे। द्वारों से होकर निकलो, निकालो, लोगों के लिए मार्ग तैयार करो, राजमार्ग बनाओ बनाओ, पत्थरों को हटाओ, लोगों के लिए एक ध्वज ऊंचा करो। देखो, प्रभु ने पृथ्वी के छोर तक ये घोषित किया है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार आता है, देख उसका प्रतिफल उसके साथ है और उसका काम उसके आगे आगे है। और वे उन्हें पवित्र लोग प्रभु के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तू कहलाएगी ढूंढी हुई न त्यागी हुई नगरी। यशाया 61:8-30:8-12।
प्रभु इन 144,000 के साथ अनंत वाचा बांधता है जो पहले त्यागे गए थे परंतु बाद में त्यागा हुआ नहीं, ऐसा एक नगर बन जाते हैं। वे उजाड़ थे और सड़क पर मृत पड़े थे। यशायाहू ने प्रभु के याजक, प्रभु के सेवक, पवित्र लोग और सियोन की दीवारों पर पहरेदार के रूप में पहचानता है।
जो लोग उनके मृत शरीरों पर आनंद मना रहे थे उनके विपरी, तब परमेश्वर उन पर जैसे दूल्हा दुल्हन पर आनंद करता है वैसे ही आनंद करता है। तब दुल्हन तैयार हो चुकी है। जिस प्रकार फिलाडेल्फिया को दी गई प्रतिज्ञा में प्रभु उन्हें एक नया नाम देता है और वो उनका नाम हेब्जिबा और ब्यूला ठहराता है। हेब्जिबा का अर्थ है मेरा आनंद उसमें है और ब्यूला का अर्थ है विवाह करना। प्रभु एलिया और मूसा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोगों से विवाह करता है।
जो काम उन्हें दिया गया है वो ये है कि वे मसीह और उसकी धार्मिकता का सुसमाचार संसार के अंत तक प्रचार करके मसीह के दूसरे आगमन के लिए मार्ग तैयार करें। आत्मा के उंडेले जाने में सांत्वनादाता ने उनका अभिषेक किया है और तब जब स्वर्ग से एक बड़ी वाणी उनसे कहेगी, यहाँ ऊपर आओ, वे पताका के समान ऊंचा उठा दिए जाएंगे। तब वे प्रभु के हाथ में महिमा का मुकुट और राजसी किरीट होंगे। जकर्याहू उसी मुकुट को एक पताका के रूप में पहचानता है और इस घटना को अंतिम वर्षा के समय में ठहराता है।
और उस दिन उनका परमेश्वर यहोवा उन्हें अपनी प्रजा की भेड़ों के झुंड के समान बचाएगा, क्योंकि वे मुकुट के रत्नों के समान होंगे जो उसकी भूमि पर ध्वज की भांति उठाए हुए होंगे, क्योंकि उसकी भलाई कितनी बड़ी है और उसका सौंदर्य कितना महान है। अन्न से जवान प्रसन्न होंगे और नए दाखरस से कुमारियां। अंतिम वर्षा के समय तुम यहोवा से वर्षा मांगो, तब यहोवा चमकीले मेघ बनाएगा और उन्हें वर्षा की बौछारें देगा और हर एक को खेत में घास देगा। जकरिया 9:10:3।
वे उसके लोगों का झुंड हों, परंतु प्रभु का एक दूसरा झुंड भी है जो तब भी बाबुल में होगा, जिसे वो भी बुलाएगा। उनका काम पुराने उजड़े स्थानों और अनेक पीढ़ियों की उजाड़ियों को फिर से बनाना होगा। वे होंगे जो लौटकर उन पुराने मार्गों को फिर से स्थापित करेंगे जिन्हें एडवेंटिज्म के भीतर और बाहर अस्वीकार कर दिया गया है और ढंक दिया गया है। वे मिलरवादी आधारभूत सत्यों की ओर लौटेंगे और उन्हें उनकी मूल शुद्धता में लाओदीकियाई एडवेंटिज्म के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और वे एडवेंटिज्म के बाहर वालों को भी ईश्वर की व्यवस्था से जुड़े पुराने सत्यों, विशेषकर विश्राम दिन के विषय में संदेश देंगे। ऐसा करते हुए वे नए इतिहास को दर्शाने के लिए अनेक पीढ़ियों के इतिहास का उपयोग करेंगे। उनका कार्य अंतिम वर्षा के दौरान होगा, जब देश में ईश्वर के न्याय होंगे, जब प्रभु अपने दाहिने हाथ से उन्हें एक ध्वज के समान उठा खड़ा करेगा। तब सारा संसार जो पहले सडर पर पड़ी उनकी मृत देहों पर आनंद थिया था, उस ध्वज को देखेगा और पहरेदारों की चेतावनी की तुरही सुनेगा।
जगत के सब निवासी और पृथ्वी पर रहने वाले लोग, जब वो पर्वतों पर ध्वज उठाए तब देखो, और जब वो तुरही फूंके तब सुनो। यशाया 18:18।
प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 में, जब वे जो उनकी मृत देहों पर आनंद मना रहे थे उन्हें उठ खड़े होते देखते हैं जो उन्हें देखते थे, उन पर बड़ा भय छा गया।
तब अशूर तलवार से गिरेगा पर किसी पराक्रमी मनुष्य की तलवार से नहीं, और ऐसी तलवार जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं होगी उसे भस्म कर देगी। पर वो तलवार से भाग निकलेगा और उसके जवान पराजित हो जाएंगे, और भय के कारण वो अपने दुर्ग की ओर चला जाएगा और उसके प्रधान ध्वज के कारण भयभीत होंगे। यहोवा का ये वचन है, जिसकी आग सियोन में है और जिसका भट्ठा यरूशलेम में है। यशाया 23:8-9।
सभी भविष्यद्वक्ताओं की गवाहियां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आकर एक साथ मिल जाती हैं। असीसरियाई दानियल अध्याय 11:40-45 में उत्तर के राजा का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना किसी सहायता के अपने अंत को पहुंचता है। जब 144,000 जो परमेश्वर के पहरेदार हैं नरसिंगे फूंकेंगे तो समूचा संसार सुनेगा और भयभीत होगा।
दो भविष्यद्वक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोग सांत्वनाकर्ता द्वारा शुभ समाचार सुनाने के लिए अभिषिक्त किए जाएंगे। ये वही पूरब और उत्तर से आने वाला समाचार है जो दानियल अध्याय 11 पद 44 में उत्तर के राजा को व्याकुल करता है और यही रविवार के कानून के संकट में उत्पीड़न की शुरुआत को चिह्नित करता है। उस समय अन्य जाति लोग बाबुल से निकल आने के संदेश का प्रत्युत्तर देंगे और आकर प्रभु के याजकों के साथ जुड़ेंगे, जिन्हें यिशै की जड़ के रूप में भी दर्शाया गया है। इस तरह उस बाइबलीय पद्धति की पहचान होती है जिसका उपयोग वे अन्य जातियों के सामने चेतावनी का संदेश प्रस्तुत करने के लिए करेंगे।
और उस दिन यिशै की जड़ होगी जो लोगों के लिए ध्वज बने के समान खड़ी होगी, उसकी ओर अन्य जातियां आएंगी और उसका विश्राम महिमामय होगा। और उस दिन ऐसा होगा कि प्रभु दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाकर अपनी प्रजा के शेष लोगों को, जो अश्शूर से और मिस्र से और पठरोस से और कूश से और एलाम से और शिनार से और हामात से और समुद्र के द्वीपों से बचे होंगे, छुड़ाएगा और वो जातियां के लिए ध्वज खड़ा करेगा और इसराइल के निकाले हुओं को इकट्ठा करेगा और यहूदा के तितर बितर लोगों को पृथ्वी के चारों कोनों से एकत्र करेगा। यशाया 11:10-12।
प्रभु ने 11 सितंबर 2001 को अपनी प्रजा को उस संदेश के साथ इकट्ठा किया जिसने इस्लाम के हमले को तीसरी विपत्ति के आगमन के रूप में पहचाना। प्रभु अपनी प्रजा को दूसरी बार फिर तब इकट्ठा करता है जब वे सड़कर पर मृत पड़े हों। जब वो ऐसा करता है तो जो इकट्ठे किए जाते हैं वे इसराइल के निकाले हुए, यहूदा के तितर बितर कहलाते हैं। 18 जुलाई 2020 को उन्हें सड़कों पर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्हें दूसरी बार इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि वे वो ध्वज बने जो परमेश्वर के उस दूसरे झुंड को इकट्ठा करे जो अभी भी बाबुल में है। जो लोग अभी भी बाबुल में हैं उनका इकट्ठा होना संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के समय से शुरू होता है, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में दो आवाजों में से दूसरी है।
पहला एकत्रीकरण केवल सितंबर 2001 को हुआ जब इस्लाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया। दूसरी बार एकत्र किए जाने वाली पताका के रूप में उन्हें यिशै की जड़ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अल्फा और ओमेगा के कार्य का ऐसा प्रतीक है जो किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत के साथ प्रदर्शित करता है। पहला एकत्रीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक इस्लामी हमले से चिह्नित था और ये संयुक्त राज्य अमेरिका पर इस्लामी हमले को दूसरे एकत्रीकरण के रूप में दर्शाता और पहचानता है। जब यिशै की जड़ अन्य जातियों के लिए पताका के रूप में खड़ी होगी तब उसका विश्राम महिमामय होगा, क्योंकि वो पताका उन लोगों को जो अब भी बाबुल में हैं सातवें दिन के सप्त के बाइबल के पुराने मार्ग पर वापस ले जाएगी। और इस प्रकार रविवार कानून संकट के समय अन्य जातियों के लिए पताका के उठाए जाने को चिह्नित करेगी।
ध्वज सबसे पहले एक शुद्धिकरण प्रक्रिया का अनुभव करता है जिसका चित्रण मलाकी अध्याय 3 मसीह द्वारा मंदिर की दो शुद्धियों और निस्संदेह मिलराइट आंदोलन के अंत में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में किया गया है। शुरुआत में जो शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है वही अंत में अक्षरशः दोहराई जाती है और इसे यशाया ने एक पुस्तक में उल्लिखित एक एकल पट्टिका के संदर्भ में दर्शाया है। एडवेंटवाद का विद्रोह 1883 तैयार की गई उस नकली पट्टिका के रूप में है जिसे हबकूक की पुस्तक के अध्याय 2 में उल्लिखित दो पट्टिकाओं को अस्वीकार कर उनके स्थान पर रखने के लिए बनाया गया था।
अब जाओ इसे उनके सामने एक पट्टिका पर लिखो और इसे एक पुस्तक में दर्ज करो ताकि ये आने वाले समय के लिए सदा सर्वदा बना रहे कि ये एक विद्रोही प्रजा है, झूठे बच्चे, ऐसे बच्चे जो प्रभु की व्यवस्था सुनना नहीं चाहते, जो दर्शन करने वालों से कहते हैं मत देखो और भविष्य वक्ताओं से हमें सही बातें ना बताओ, हमसे मनभावनी बातें कहो, धोखे की भविष्यवाणियां करो, रास्ते से हट जाओ, मार्ग से एक ओर हो जाओ, हमारे सामने से इसराइल के पवित्र जन को हटाओ। इसलिए इसराइल का पवित्र जन यों कहता है, क्योंकि तुम इस वचन को तुच्छ जानते हो और अत्याचार और कुटिलता पर भरोसा रखते हो और उसी पर टिके रहते हो, इसलिए ये अधर्म तुम्हारे लिए उस दरार के समान होगा जो गिरने को तैयार है, ऊंची दीवार में बाहर को उभरी हुई, जिसका टूटना एक ही क्षण में अचानक आ पड़ता है। और वो उसे वैसे तोड़ेगा जैसे कुम्हार के पात्र को तोड़ा जाता है टुकड़े टुकड़े करके। वो दया न करेगा, यहां तक कि उसके टूटे में ऐसा एक भी टुकड़ा न मिलेगा जिससे चूल्हे से अंगारा उठाया जाए या कुंड से पानी निकाला जाए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर इज़राइल के पवित्र जन यूं कहते हैं, मन फिराने और विश्राम में तुम्हारा उद्धार है, शांति और भरोसे में तुम्हारी शक्ति है, पर तुम न माने। पर तुमने कहा, नहीं, हम घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और हम तेज घोड़ों पर सवार होंगे, इसलिए जो तुम्हारा पीछा करेंगे वे भी तेज होंगे। एक की डांट से 1,000 भागेंगे, 5 की डांट से तुम भागोगे, जब तक कि तुम पर्वत की चोटी पर संकेत स्तंभ की तरह और पहाड़ी पर ध्वज की तरह अकेले न रह जाओ। इसलिए प्रभु ठहरेगा कि वो तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए वो ऊंचा उठेगा कि वो तुम पर दया करे। क्योंकि प्रभु न्याय का परमेश्वर है, धन्य है वे सब जो उसकी बाट जोते हैं। क्योंकि लोग सियोन में यरूशलेम में बसेंगे, तू फिर न रोएगी, तेरी पुकार की आवाज पर वो तुझ पर बहुत अनुग्रह करेगा, जब वो सुनेगा तब वो तुझे उत्तर देगा। यशाया 30:8-19।
1863 में एडवेंटवाद ने विलियम मिलर के उस भविष्यवाणी संदेश को, जो हबक्कूक की 2 पवित्र पट्टिकाओं पर प्रदर्शित था, अस्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू की। यीशु प्रारंभ से अंत को दर्शाते हैं। इस खंड में एडवेंटवाद के प्रारंभ के विद्रोही एडवेंटवाद के अंत के विद्रोहियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही मामलों में ये विद्रोह प्रत्येक इतिहास के भविष्यवाणी संदेश और कार्य पद्धति के अस्वीकार का प्रतिनिधित्व करता है, जब वे दृष्टाओं से कहते हैं मत देखो, और भविष्यद्वक्ताओं से हमारे लिए सही बातें भविष्यवाणी मत करो, हमसे मनभावनी बातें कहो, छल की भविष्यवाणियां करो। वे ये भी निश्चय कर लेते हैं कि वे मार्ग छोड़ दें जब वे ये घोषणा करते हैं, रास्ते से हट जाओ, पथ से हट जाओ, हमारे सामने से इज़राइल का पवित्र दूर कर दो। धर्मियों का मार्ग यिर्मयाह अध्याय 6 के 16 और 17 पदों में बताए गए पुराने मार्ग हैं। विद्रोही ये निश्चय करते हैं कि वे मूलभूत सत्यों में नहीं चलेंगे, और न ही उन प्रहरियों द्वारा फूंके गए नरसिंगे की धुनी पर कान धरेंगे जिन्हें उठाया गया है, जो मिलेराइट आंदोलन और फ्यूचर फॉर अमेरिका आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रभु यूं कहता है, मार्गों में खड़े होकर देखो और प्राचीन पथों के विषय में पूछो कि भला मार्ग कहाँ है, और उसी में चलो, तब तुम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाओगे। परंतु उन्होंने कहा, हम उसमें नहीं चलेंगे, मैंने तुम्हारे ऊपर प्रहरी भी ठहराए। ये कहते हुए तुरही का शब्द सुनो, परंतु उन्होंने कहा, हम नहीं सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे सभा जान लो कि उनके बीच क्या है। हे पृथ्वी सुन, देखो मैं इस प्रजा पर विपत्ति ले आऊंगा, अर्थात उनके विचारों का फल, क्योंकि उन्होंने न मेरे वचनों को सुना न मेरी व्यवस्था को, वरन उसे ठुकरा दिया। यिर्मयाह 6:19।
पुराने मार्गों पर चलने से विद्रोहियों का इनकार इस रूप में भी प्रस्तुत किया गया है कि वे इज़राइल के पवित्र को अपने सामने से दूर कर दें कि इच्छा रखे हैं, और ये आधी रात की पुकार के उस संदेश के अस्वीकार का द्योतक है जो अल्फा और ओमेगा की उस धारणा पर आधारित है जिसमें आरंभ के द्वारा एडवेंटवाद के अंत का निरूपण किया जाता है।
मार्ग की शुरुआत में उनके पीछे एक उज्ज्वल प्रकाश स्थापित किया गया था, जिसके बारे में एक स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि वो मध्यरात्रि की पुकार थी। ये प्रकाश पूरे मार्ग भर चमकता रहा और उनके पांवों के लिए उजाला देता रहा, ताकि वे ठोकर न खाएं। यदि वे अपनी आंखें यीशु पर, जो उनके बिल्कुल सामने था और उन्हें नगर की ओर ले जा रहा था, टिकाए रखते तो वे सुरक्षित रहते। परंतु जल्द ही कुछ थक गए और कहने लगे कि नगर बहुत दूर है, और वे अपेक्षा करते थे कि वे इससे पहले ही उसमें प्रवेश कर चुके होते। तब यीशु अपनी महिमामय दाहिनी भुजा उठाकर उन्हें प्रोत्साहित करता, और उसकी भुजा से एक प्रकाश निकलता जो एडवेंट दल के ऊपर लहराता, और वे पुकार उठते, हल्लेलुया। कुछ अन्य ने उतावलेपन में अपने पीछे की ज्योति का इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इतनी दूर तक ले जाने वाला परमेश्वर नहीं था। उनकी पीछे की ज्योति बुझ गई उनके पांव पूर्ण अंधकार में पड़ गए और वे ठोकर खाकर लक्ष्य और यीशु दोनों को दृष्टि से खो बैठे और मार्ग से गिरकर नीचे स्थित अंधकारमय और दुष्ट संसार में जा पड़े। एलन जी वाइट के ईसाई अनुभव और शिक्षाएं 57।
मध्यरात्रि की पुकार द्वारा दर्शाई गई शुद्धिकरण की प्रक्रिया उपासकों के दो वर्ग उत्पन्न करती है और यशायाहा का 30वां अध्याय मूर्ख कुमारियों के तेल के अभाव को पानी या आग एकत्र न कर पाने की असमर्थता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो दोनों ही सांत्वनादाता के प्रतीक है। जब यशायाहा लिखता है, जिसका टूटना एक क्षण में अचानक आ पड़ता है और वो उसे कुम्हार के पात्र के टूटने के समान तोड़ेगा जो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वो दया नहीं करेगा, यहां तक कि उसके फटने पर ऐसा भी कोई ठीकरा न मिलेगा कि उससे अंगीठी से आग ली जा सके या उससे हौद में से पानी निकाला जा सके। उनका न्याय अचानक आता है, जैसा कि मध्यरात्रि की पुकार द्वारा दर्शाया गया है। तब वे पाती हैं कि तेल प्राप्त करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। यशायाहा की गवाही में आग और पानी 10 कुमारियों के दृष्टांत में तेल का ही एक अन्य निरूपण है। तेल, पानी और आग चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे संदेश का और साथ ही सांत्वनादाता की उपस्थिति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब 10 कुमारियों का न्याय एक क्षण में अचानक आ पड़ता है, तब इन प्रतीकों में से कोई भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब बहुत देर हो चुकी होती है। एकमात्र सुरक्षा लौटना में है। यही वो प्रतिज्ञा थी जो यिर्मयाह को दी गई थी, जब उसने उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जो पहली निराशा से हताश हुए थे। यदि परमेश्वर की प्रजा उसकी ओर लौट आती तो वो भी उनकी ओर लौट आता, परंतु विद्रोही लौटने से इनकार करते हैं। और वो प्रकाश जो मार्ग को प्रकाशित कर रहा था बुझ गया। आरंभ में जो प्रकाश था वो आधी रात की पुकार था, और आगे का मार्ग मसीह की महिमामय दाहिनी भुजा से अनंत काल तक प्रकाशित रहा। मार्ग पर चलने वालों के आगे मसीह थे और पीछे का प्रकाश भी वही होना चाहिए, क्योंकि मसीह मार्ग के अंत को उसके आरंभ द्वारा दर्शाते हैं। आधी रात की पुकार तब भी वर्तमान सत्य थी और आज भी है।
मेरा ध्यान अक्सर 10 कुवारियों के दृष्टांत की ओर दिलाया जाता है, जिनमें से 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख थीं। ये दृष्टांत शब्दशः पूरा हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि ये इस समय पर विशेष रूप से लागू होता है, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समान ये पूरा हो चुका है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू इन हेरॉल्ड, 19 अगस्त 1890।
उनके सामने से पवित्र जन को हटाने की इच्छा न केवल मसीह का बल्कि अल्फा और ओमेगा के रूप में मसीह का भी अस्वीकार है। ये आधी रात की पुकार के संदेश का अस्वीकार है। एडवेंटवाद की शुरुआत में आधी रात की पुकार का संदेश असफल भविष्यवाणी का सुधार था। वे विद्रोही जिन्होंने पुराने मार्ग को अस्वीकार किया और धर्मियों से अलग एक नकली तालिका बनाई, जैसा कि मिलेराइट आंदोलन में मध्यरात्रि की पुकार की पूर्ति में दर्शाया गया है। तब 1001 की फटकार पर भाग गए और आंदोलन अचानक 50,000 से घटकर 50 रह गया। वे फटकार के कारण भागे, जो 5 बुद्धिमान कुमवारियों की ओर से आई, जिन्होंने उनसे कहा कि उनके पास बांटने के लिए तेल नहीं है और उन्हें जाकर अपना तेल स्वयं खरीदना चाहिए। मूर्खों का बुद्धिमानों से अलग होना बुद्धिमान कुमवारियों को पहाड़ की चोटी पर एक प्रकाश स्तंभ और पहाड़ी पर एक ध्वज के समान छोड़ गया। 22 अक्टूबर 1844 को मूर्ख कुमवारियों के विद्रोह ने 1863 के विद्रोह का चित्रण किया, क्योंकि 22 अक्टूबर 1844 उन 19 वर्षों की शुरुआत थी जो लेव्य व्यवस्था 26 के 7 गुना के अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस विषय पर कहने के लिए हमारे पास और भी है, पर 1844 का विद्रोह 1863 के विद्रोह का प्रतिरूप था और वो उस बिंदु को भी चिह्नित करता है जब नकली तालिका बनाई गई थी। मूर्ख कुवारियों द्वारा अनुभव किया गया भय वही भय है जो तब प्रकट होता है जब बुद्धिमान कुवारियां पुनर्जीवित की जाती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। तब 18 जुलाई 2020 की निराशा से उबरने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है और अगली घटना स्वर्ग में आरोहण की होती है, जो रविवार कानून के समय घटित होती है। उसी समय एक बड़ा भूकंप होता है
और उसी घड़ी वहां बड़ा भूकंप आया और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और भूकंप में 7,000 मनुष्य मारे गए और बचे हुए डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा दी। दूसरी विपत्ति बीत गई, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आती है। प्रकाशित वाक्य 1113-14।
प्रकाशित वाक्य अन्वय ये बताता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उसी इतिहास में फ्रांस का राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र जिसके दो भविष्य सूचक सींग थे, जिन्हें सदोम और मिस्र के रूप में दर्शाया गया था, उखाड़ फेंका गया। फ्रांस के ये दो सींग संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सींगों के प्रतिरूप है। भविष्यवाणी के अनुसार फ्रांस उन 10 राज्यों में से एक था जो दानियल 7 में मूर्ति पूजक रोम का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिए राज्य नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। वास्तव में दानियल 7 के उन 10 सींगों में से जिन्होंने अंततः 538 ईस्वी में पापाई सत्ता को पृथ्वी के सिंहासन पर बिठाया, फ्रांस वह प्रमुख राज्य था जिसने पापाई सत्ता की स्थापना की। दानियल 7 की उन 10 शक्तियों में से एक के रूप में फ्रांस प्रकाशित वाक्य 13 के दो सींग वाले पृथ्वी के पशु की भूमिका का प्रतिरूप है। अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका पापाई सत्ता के लिए वही कार्य पूरा करता है जो आरंभ में फ्रांस ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका उन 10 राजाओं की प्रमुख शक्ति है जो संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वह रविवार के कानून के भूकंप में गिर जाता है। हम अगले लेख में इन पदों को अधिक विस्तार से संबोधित करेंगे। इस लेख के मुख्य विषयों में से एक ये है कि ये ऐसा संदेश है जो परमेश्वर की प्रजा को उनके पैरों पर खड़ा कर देता है, क्योंकि जो सांत्वना करता उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करता है वो तेल का प्रतिनिधित्व करता है, और वो तेल न केवल पवित्र आत्मा का प्रतीक है बल्कि वे संदेश भी जिन्हें परमेश्वर अपनी प्रजा को भेजता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का वो संदेश जो मूसा और एलिया को उनके पैरों पर खड़ा करता है, यिर्मयाह को दी गई प्रतिज्ञा द्वारा भी दर्शाया गया है।
इस कारण यहोवा यू कहता है, यदि तू लौट आए तो मैं तुझे फिर लौटा लूंगा और तू मेरे सामने खड़ा रहेगा, और यदि तू निकृष्ट में से उत्तम को अलग करे तो तू मेरे मुख के समान होगा। वे तेरे पास लौटें, परंतु तू उनकी ओर ना लौटना, और मैं तुझे इस लोगों के सामने एक दुर्गबद्ध पीतल की दीवार बना दूंगा। वे तुझसे लड़ेंगे पर तेरे विरुद्ध प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। और मैं तुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ाऊंगा और मैं तुझे भयंकरों के हाथ से मुक्त करूंगा। यिर्मयाह 15:19-21।
यशाया ने भी वही अपील की थी जब उन्होंने कहा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर इज़राइल के पवित्र ने यूं कहा है, लौट आने और विश्राम करने में तुम्हारा उद्धार है। यशाया ने ये भी जोड़ा कि लौटना उस दृष्टांत के प्रतीक्षा काल से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने लिखा, और इस कारण प्रभु ठहरेगा कि वो तुम पर अनुग्रह करे, और इस कारण वो ऊंचा उठेगा कि वो तुम पर दया करे, क्योंकि प्रभु न्याय का परमेश्वर है, धन्य है वे सब जो उसकी बाट जोहते हैं। यिर्मयाह के अनुसार परमेश्वर का मुख बनने का जो विशेषाधिकार है वो तब परमेश्वर की ओर से बोलने का विशेषाधिकार है जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर की तरह बोलता है। वे वचन जो तब परमेश्वर के लोग बोलेंगे पापसी पशु के चिन्ह के विरुद्ध चेतावनी होंगे। उस महिमामय आंदोलन में सहभागी होने के लिए आवश्यक है कि हम लौटें।
यदि तू लौटना चाहे, हे इज़राइल, यहोवा कहता है, मेरे पास लौटा, और यदि तू अपनी घृणित वस्तुएं मेरी दृष्टि से दूर कर दे तो तुझे उखाड़ा नहीं जाएगा, और तू ये कहकर शपथ खाएगा, यहोवा जीवित है, सत्य में, न्याय में और धर्म में, और जातियां उसी में अपने को धन्य कहेंगी और उसी में अपना गौरव करेंगी, क्योंकि यहोवा ये निबूधा और यरूशलेम के लोगों से कहता है, अपनी पड़ती भूमि जोत लो और कांटों के बीच मत पो, यहोवा के लिए अपना अपना खतना करो और अपने हृदय का अग्रचर्म दूर करो। हे यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के निवासियों, ऐसा न हो कि मेरा प्रकोप आग की तरह निकल पड़े और तुम्हारे कर्मों की बुराई के कारण ऐसा जले कि कोई उसे बुझा न सके। यहूदा में घोषणा करो और यरूशलेम में प्रकाशित करो और कहो, देश में नरसिंगा फूंको, पुकारो, इकट्ठे हो और कहो, इकट्ठा हो जाओ और हम किले बंद नगरों में चलें, सियोन की ओर ध्वज खड़ा करो, पीछे हटो, रुको नहीं, क्योंकि मैं उत्तर से विपत्ति और बड़ा विनाश ले आ रहा हूँ। सिंह अपने झुरमट से निकल आया है और अन्य जातियों का विनाशक मार्ग पर है। वो तेरे देश को उजाड़ने के लिए अपने स्थान से निकल पड़ा है और तेरे नगर उजाड़े जाएंगे, उनमें कोई रहने वाला न रहेगा। यिर्मयाह 4:1-7।
परंतु यहोवा का आत्मा गिदोन पर उतरा और उसने नरसिंगा फूंका और अबीएजेर उसके पीछे इकट्ठा हो गया और उसने सारे मनश्शे में दूत भेजे और वे भी उसके पीछे इकट्ठा हो गए और उसने आशेर और जबूलून और नप्ताली के पास दूत भेजे और वे उनसे मिलने को आ गए। न्यायियों 6:3।